ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश में अस्थिरता और अराजकता को स्थान न मिले, यही मेरी इच्छा है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक ने भाद्र 23 और 24 की घटना से संबंधित जांच आयोग में पूछ 14 को देंगे बयान। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 91 दीक्षांत समारोह में 16,000 से अधिक छात्र हुए दीक्षित। और रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की का आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि आगामी चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सरकार कड़ी मेहनत से काम कर रही है। बाराखड़ी मीडिया द्वारा आज काठमांडू में आयोजित बाराखड़ी कथा लेखन प्रतियोगिता 2082 के विजेता लेखकों को पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने ये बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यह इच्छा है कि देश में अस्थिरता और अराजकता को कोई स्थान न मिले। अर्थमंत्री डॉ रामेश्वर खनाल ने कहा है कि आगामी फागुन 21 गते होने वाला प्रतिनिधि सभा चुनाव निर्धारित तिथि पर ही होंगे। सिरहा के लहान स्थित राम कुमार सारदा उमा प्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पताल लहान के जमीन हस्तांतरण तथा सम्मान कार्यक्रम में मंत्री खनाल ने कहा कि सरकार ने चुनाव का वातावरण बना लिए हैं, इसलिए आम नागरिकों से आग्रह है कि किसी के बहकावे में न आकर भ्रम में न पड़े। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद देश की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे लय में लौट आएगी, ऐसा उनका विश्वास है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय का 91वां दीक्षांत समारोह आज राजधानी में संपन्न हुआ। इस वर्ष विभिन्न स्तरों पर उत्तीर्ण 89,191 छात्रों में से 16,380 छात्र दीक्षित हुए हैं। आज काठमांडू में आयोजित दीक्षांत समारोह में स्नातक से लेकर पीएचडी तक की शैक्षिक उपाधि प्राप्त 16,380 छात्र दीक्षित हुए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री एवं विश्वविद्यालय की कुलपति सुशीला कार्की ने ज्ञान को सेवा के साथ, कौशल को सदाचार के साथ और सफलता को समाज के प्रति योगदान के साथ जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 4 लाख से अधिक छात्रों वाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की चुनौती है। समारोह के मुख्य अतिथि भौतिक शास्त्र के 2015 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डॉ ताका आकी कजिता ने कहा कि उन्होंने पीएचडी प्राप्त करने के बाद भी लगातार खोज, अनुसंधान और अध्ययन जारी रखा, जिससे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की क्षमता का विश्वास हुआ है। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक ने भाद्र 23 एवं 24 की घटना से संबंधित जांच आयोग में बयान देने जाने की बात कही है। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक के बाद सानेपा स्थित पार्टी कार्यालय से बाहर निकलते हुए पत्रकारों को उन्होंने बताया कि वे इसी पूछ 14 गते सोमवार को आयोग में बयान देने जाएंगे। आयोग ने उन्हें बयान के लिए पूछ 11 गते शुक्रवार को आने का पत्र भेजा था। ईसाई धर्म के संस्थापक येशु ख्रिस्ट के जन्मदिन की स्मृति में आज ईसाई धर्मावलंबी क्रिसमस मना रहे हैं। आज से 2025 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को इसराइल के बेथलेहम में येशु ख्रिस्ट का जन्म हुआ था। इस दिवस के अवसर पर आज सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी दिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने आज से समानुपातिक उम्मीदवार चुनने का प्रक्रिया शुरू किया है। पार्टी ने आज और कल ब्लूप्रिंट संवाद तथा शून्य समय कार्यक्रम मार्फत इच्छाओं वालों को प्रस्तुति रखने की व्यवस्था मिलाया गया है। ये जानकारी प्रवक्ता मनीष झा ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
ए त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रीय सभा अधिवेशन आह्वान का मांग किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा संसदीय दल के आज की बैठक से यह निर्णय किया गया है कि जानकारी प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकाया ने दी। संसदीय दल के नेता कृष्ण प्रसाद सिलौटा के अध्यक्षता में हुए बैठक से प्रतिनिधि सभा नहीं है, इसलिए अविलंब राष्ट्रीय सभा बैठक आह्वान करने के लिए उक्त सभा के अध्यक्ष समक्ष मांग करने का निर्णय किया गया है। पुलिस ने 4 किलो 300 ग्राम अवैध लागू औषध कोकीन सहित 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो कोटेश्वर से खटे पुलिस की टोली ने हवाई मार्ग से होते हुए नेपाल आए विदेशी नागरिकों को निगरानी के दौरान काठमांडू महानगरपालिका वार्ड नंबर 9 सीनामंगल क्षेत्र से गिरफ्तार करके आज सार्वजनिक किया है। मैथिल भाषा साहित्य मिथिला संस्कृति सभ्यता का संरक्षण संवर्धन करने के लिए कल से विराटनगर में 2 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय मैथिल सम्मेलन 2025 होने जा रही है। सम्मेलन में नेपाल भारत लगायत अन्य देशों के 100 मैथिली भाषी प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी, यह जानकारी आयोजकों ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने और उन्हें दरकिनार करने का प्रयास कर रहा है। यह टिप्पणी उन्होंने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 2 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। जेलेंस्की के अनुसार रूस विभिन्न देशों और संस्थाओं के माध्यम से प्रतिबंधों का बायपास करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस अवैध तरीकों से तकनीक, हथियारों के घटक और अन्य संसाधन हासिल कर रहा है। पश्चिमी देशों ने रूस पर यूक्रेन आक्रमण के बाद कड़े आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस प्रतिबंधों का उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता को कमजोर करना है। रूस ने प्रतिबंधों को अवैध और पश्चिम का आर्थिक युद्ध बताया है। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को आयात प्रतिस्थापन और अन्य देशों जैसे चीन, भारत, ईरान के साथ बढ़ते व्यापार के जरिए समर्थन देने की कोशिश की है। यूक्रेन और उसके सहयोगी देश रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त करने पर जोर दे रहे हैं। कुछ देशों पर आरोप है कि वे रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। जेलेंस्की का यह आरोप रूस यूक्रेन युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय आयाम को दर्शाता है। प्रतिबंधों की प्रभावशीलता और रूस की उन्हें दरकिनार करने की क्षमता युद्ध के भविष्य के लिए अहम मानी जा रही है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहस जारी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अस्थिरता और अराजकता को स्थान न मिले, यही मेरी इच्छा है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक ने भाद्र 23 और 24 की घटना से संबंधित जांच आयोग में पूछ 14 को देंगे बयान। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 91 दीक्षांत समारोह में 16,000 से अधिक छात्र हुए हैं दीक्षित। और रूस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की का आरोप। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।